करने की स्थिति पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन अगली स्तुति की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब भाव्य भावक संकर दोष दूर करके स्तुति कहते हैं। इसकी गाथा है, जो मोहम तुजिणी का नान सहावादी अम्मुन दियादं तम जिद मोहम साहू इसी के साथ 33 नंबर की गाथा भी पढ़ दीजिए। जिद मोह सदु जैया कीनो मोहो हवेज साहुस तैया भुखीण मोहो सोनी चयवी दुहिं। इस प्रकार यहाँ पर भाव्य भावक शंकर दोष की स्तुति करके कहा, तो इसका हरि गीत 33 नंबर की गाथा का हरि गीत,
तरी मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने नहीं जित मोही कामा।
और इसके अगली गाथा का हरि गीत,
पुरुष का जब मोह क्षय हो जाता है परमात्म विज्ञायक पुरुष मोह तब उनको कहे।
बात एक ही है, पहले मोह को जीतने की बात है और दूसरे में मोह को जीत करके ऐसा जीता कभी वो उठ करके फिर खड़ा ही नहीं हो सका। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आपने किसी राजा को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद आपने उसे छोड़ दिया, जीत करके भी छोड़ दिया, तो होता क्या था, वो अपनी ताकत बढ़ा करके और वापस अपने पर हावी हो जाता। और ऐसा भी होता था कि उस विरोधी राजा को उसने सर्वथा नष्ट कर दिया, जीता और जीत करके समूल नष्ट कर दिया, मतलब उसकी अस्तित्व खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया, तो उसके पुनर्जीवित होकर के हमारे सामने खड़ा होने की कोई संभावना नहीं रही। तो ये पहले नंबर में ऐसे ही हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी गाथा है, जो मुनि मोह को जीत कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से, उसमें क्या था, 31 नंबर की गाथा में क्या शब्द था देखिए जरा, 31 नंबर की गाथा में ये था अन्य द्रव्यों से, है ना, वहां पे अन्य द्रव्य की बात थी, क्योंकि अन्य द्रव्य की बात क्यों थी, वो गेयभूत द्रव्यों की बात थी। और यहाँ कहा अन्य द्रव्य भावों से, मतलब अन्य द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भले ही होते हैं अपनी पर्याय में। 10वें नंबर का अपने यहाँ पे कलश है, उसने एक बहुत मार्मिक बात कही, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम माकोण माध्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश यन शुद्ध नयोग भी देती। स्वभाव से भिन्न, उन्होंने कहा पर द्रव्य के गुण, पर द्रव्य की पर्याय और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव, मतलब भाव होते हैं अपनी पर्याय में लेकिन होते हैं पर द्रव्य के निमित्त से। समझ आएगा, जैसे बुखार होती है ना, डेंगू बुखार होती है मान लीजिए किसी को, तो होती है अपने शरीर में, लेकिन शरीर में होने पर भी वो डेंगू बुखार शरीर का स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बुखार नहीं था तब भी शरीर था और वो बुखार चली जाएगी तब भी शरीर रहेगा। तो डेंगू बुखार हुआ क्यों, तो हुआ है शरीर में लेकिन उसमें कीटाणु है डेंगू मच्छर के, डेंगू मच्छर के कीटाणु है, तो वो वास्तव इसलिए उसका नाम ही डेंगू बुखार है। अपने में होने पर भी शरीर में, अपने में यहाँ पे उदाहरण में शरीर में होने पर भी वो डेंगू मच्छर का उत्पाद है, मतलब डेंगू मच्छर की वजह से वो आया। इसी तरह यहाँ पे का अन्य द्रव्य भाव, अन्य द्रव्य भाव माने जो अपने स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुए और अन्य द्रव्य की ओर अपना झुकाव गया तो वो भाव पैदा हुए। ये मोराग द्वेष के भाव ऐसे ही हैं, होते हैं आत्मा की पर्याय में, लेकिन गजब की बात ये आत्मा के अवलंबन से नहीं होते। आत्मा की पर्याय में होने पर भी उन भावों को आत्मा का अवलंबन नहीं है, वे भाव जब भी होते हैं निरंतर निश्चित रूप से परावलंबन से होते हैं। और परावलंबन में मुख्य रूप से नियम रूप से अगर कोई परावलंबन है उसमें तो कर्म का लोभ। देखो नो कर्म रागादि के होने में नियम रूप निमित्त नहीं, क्या कहा, रागादि के होने में नियम रूप निमित्त नहीं। नो कर्म होने पर रागादि हो अथवा नहीं भी हो कोई नियम नहीं है, लेकिन कर्म का उदय हो और उसमें जीव जुड़ान करे तो निश्चित रूप से रागादि होते हैं। मतलब कर्म का उदय तो नियम रूप से निमित्त है, लेकिन नो कर्म कोई निमित्त हो और नहीं भी हो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे का अन्य द्रव्य भावों के द्वारा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक, अधिक का मतलब होता है भिन्न, मतलब अन्य द्रव्य के भाव। गुरुदेव श्री ने इसको इस भाषा में कहा कि ये जो रागादि भाव होते हैं, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उन्होंने कहा यह भावक का भाव है, यह ज्ञायक का भाव नहीं है। भावक माने कर्म का उदय, और उस कर्म के उदय का अनुसरण करके जो भाव हुए उन्हें कहते हैं भाव्य। कर्म के उदय को कहते हैं भावक, और कर्म के उदय का लक्ष्य करके अपनी परिणति में जो विकार होता है उस विकार को बोलते हैं भाव्य। जैसे निमित्त की ओर से कार्य को नैमित्तिक संज्ञा है, उपादान की ओर से उसी कार्य को उपादेयी संज्ञा है, इसी तरह यहाँ भाव्य भावक का समझ। कर्म का उदय वो भावक है, माने कर्म का उदय विकार कराता है ये सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि कर्म का उदय विकार नहीं कराता है, नहीं उदय का अनुसरण करने वाला जो अपना भाव है, कि जो कर्म के उदय का अनुसरण करता है उस कर्म के उदय के अनुसरण में विकार की उत्पत्ति होती है। इसके लिए गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, देखो शास्त्र में पर से विकार होता है ऐसा नहीं कहा, तो क्या कहा, उन्होंने कहा कि पर संग एव, मतलब पर से नहीं लेकिन पर के संग से विकार होता है। तो जिसके संग से हुआ उसको उसी में डालकर भगवान आत्मा को उस विकार से भिन्न किया। आगे यह एक पद्धति है जिनवाणी की, और तो यहाँ पे कहा उसके द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है अपनी आत्मा को, है ना। वो कहते हैं उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जिस मोह कहते हैं, ऐसे मुनि को जो इस तरह जिन्होंने अन्य द्रव्यों से भिन्न, अन्य ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक अपनी आत्मा को जिसने जाना, ऐसे मुनि को परमार्थ को जो जानने वाले हैं वे चित्त मोह नाम से संबोधन करते हैं। ये चित्त मोह है, क्षीण मोह की बात नहीं है, चित्त मोह की बात है। देखिए यहां पे मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रगट होता है। क्या कहा, देखिए विकार में भी मोह राग द्वेष में भी एक बहुत बढ़िया बात है, जो आठ कर्म होते हैं उन आठ कर्मों में चार अगातिया कर्म वे तो मात्र बाह्य संयोग की उपलब्धि में निमित्त होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये जो भातियाकरण के तीन भेद हैं, इनका जितना उदय है उतना ज्ञान, दर्शन, वीर्य वर्तमान में अप्रकट है, मतलब प्रकट ही नहीं है, और जितना इनका क्षयोत्सव है इधर इतना ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट है पर्याय में, और जो ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट है इसे वो स्वभाव का अंश, वो विकार है। अब बचा मोह कर्म। उधर मोह कर्म का उदय, उदय का मतलब क्या होता है, मोह कर्म का हल देने की सामर्थ्य से प्रकट रूप उदय होकर, मतलब उदय का मतलब क्या होता है, तो हल देने की सामर्थ्य रूप से प्रकट होता है, उसको हमारे ज्ञान शासन में अनुभाग बंद बोलते हैं ना, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो यहाँ पर क्या है, मोह कर्म हल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने को प्रकट होता है, भावक पने से प्रकट होता है। भावक माने कब, इधर हम भाव्य करें उसके उदय का अनुसरण करके, इधर हम भाव्य करें उसको बोलते हैं भाव्य। इधर हम भाव्य रूप मन मोह राग द्वेष के परिणाम करें तो कर्म के उदय को क्या बोलेंगे, भावक, जिसे क्या बोलेंगे, देखो इसको अपने से समझें, कर्म का उदय आया, अब वो उदय कब कहलाता है, तो वो उदय कब कहलाता है, जब हम उसका लक्ष्य करके परिणति में नया विकार खड़ा करें, नया विकार उत्पन्न करें, उस कर्म के उदय को कहते हैं उदय, और जो नया विकार खड़ा हुआ उसको बोलते हैं उदयी, मतलब उदय के अनुसरण से होने वाला परिणाम। और यदि हम उसी समय अपने स्वभाव का अवलंबन लें, नया विकार खड़ा नहीं करें, तो जो उदय आया है वो तो उदय को जाने के लिए ही आया है, और अगर उस उदय का अनुसरण करके हम विकार नहीं करें और उसी समय स्वभाव का अनुसरण करें, तो स्वभाव के अवलंबन से निर्मल परिणति प्रकट होगी और उस उदय को निर्जरा कहा जाएगा। तो वो दो चीजें हैं, इधर कर्म का उदय है, कर्म का उदय, इधर हमारा वर्तमान परिणाम, और इधर त्रिकाली स्वभाव का उदय, मतलब उधर निमित्त में कर्म का उदय चल रहा है और इधर हमारा त्रिकाली स्वभाव, वो भी तो नित्य उदय रूप है कि नहीं है, कि नहीं, नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं है, तो हर समय उस त्रिकाली स्वभाव का भी प्रकट उदय चल रहा है, प्रकट मतलब त्रिकाली का त्रिकाली रूप से प्रकट, पर्याय में प्रकट की बात ही कर रहा हूं, त्रिकाली स्वभाव भी त्रिकाली के रूप में हर समय उदयवान है कि नहीं। तो इधर कर्म का उदय हो रहा है एक एक समय करके, और उसी समय इधर त्रिकाली स्वभाव भी प्रकट रूप उदय रूप है, और इधर एक वर्तमान समय का परिणाम, अब वर्तमान समय का वो परिणाम यदि उस कर्म के उदय का अनुसरण करता है, अर्थात त्रिकाली स्वभाव के उदय का अनुसरण छोड़कर कर्म के उदय का अनुसरण करता है, तो नया विकार पैदा होता है, और जब नया विकार पैदा होता है उस कर्म के उदय को कहते हैं भावक, और विकारी परिणाम को कहते हैं भाव्य। आगे समझ, और दूसरी बात, जब वही वर्तमान परिणाम, जैसे इधर कर्म का उदय है ना, तो इसी तरह इधर त्रिकाली का भी उदय है, त्रिकाली भी हर समय, हर परिणति के समय त्रिकाली स्वभाव भी अन्वय रूप से वहां विद्यमान रहेगी, एक भी परिणाम के समय त्रिकाली स्वभाव की अविद्यमानता हो, अनुपलब्धता हो, गैर हाजिरी हो, दुखपना हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब वो परिणाम त्रिकालीन स्वभाव के त्रिकाल उदय प्रकट उदय बने जिसके उद्योग होने से क्षणिक नहीं, ऐसा जो अपना त्रिकालीन स्वभाव है उस त्रिकालीन स्वभाव में अपनत्व भाव से परिणमित होता है, अर्थात कर्म का उदय का अनुसरण नहीं करता। तो कर्म के उदय को निद्रा कहते हैं और इधर लेंगे ना तो त्रिकाली स्वभाव को कहेंगे भावक, और त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई निर्मल शुद्ध परिणति को कहेंगे भाव। दो तरह से भाव्य भाव सुनना, कर्म के उदय को भी भावक कहते हैं और उसके लक्ष्य से जो विकारी परिणाम हो उसको भाग्य कहेंगे। त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करे तो त्रिकाली स्वभाव भावक और उसका लक्ष्य करके होने वाली निर्मल परिणति को भाग्य। भाग्य माने भावक के निमित्त से, भावक के लक्ष्य से, भावक का अनुसरण करके होने वाला भाव। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देखो वैसे तो इस श्रेणी की बात है लेकिन श्रेणी के पहले भी ये चीज होती कि नहीं, समय दर्शन में भी होता है कि नहीं होता, हम किसका लक्ष्य करें। कर्म भाई मार्केट में सभी तरह की दुकानें खुली होती है ना, लेकिन हमको जो चीज चाहिए हमारे कदम उसी ओर बढ़ते हैं, और जिस दुकान पर जो चीज हमें चाहिए उस दुकान पर हम जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कर्म ने भी अपनी दुकान खोल रखी है, उसका भी उदय चल रहा है और एक एक समय करके उदय चल रहा है। जब तक वो सत्ता में है कर्म, तब तक एक एक समय करके उसका उदय आता है, आबादा काल को छोड़कर करणादेव का विशेष गुण। और इधर त्रिकाली स्वभाव में तो कोई आबादा काल होता ही नहीं, त्रिकाली स्वभाव तो नित्य 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 हर समय हर समय हर समय निरंतर धूल निरंतर धूल निरंतर धूल, ऐसा हर समय उदय रूप हो ही रहा है। हम किसका लक्ष्य करें, त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य चूक कर यदि कर्म के उदय का लक्ष्य करते हैं तो मोह राज उसके परिणाम करते हैं, और यदि कर्म के उदय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तो निर्मल परिणाम होता है। निर्मल परिणाम वो धर्म है और मलिन परिणाम वो अधर्म है। आज्ञा वो यहां पे कह रहे अभी क्या करना, चीजें तो दोनों हमारे सामने है लेकिन हमें क्या करना वो अपने को नक्की करना है। देखो जो जिनको स्तुति होती है वो तो होती है, अपने को अपना प्रयोजन कैसे साधना है इसमें, हर जगह अपनी नजर अपने प्रयोजन को साधने पर होनी चाहिए। हम अपना प्रयोजन कैसे साधें, आज्ञा वो यहां पे कह रहे देखो तथापि तथापि देखो यहाँ पे तो मोह कर्म का फल देने की समर्थ रूप से प्रकट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है, तथापि तद अनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष के दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्तीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमात्म से भिन्न अपने आत्मा का जो मुनि अनुभव करता है। बहुत लंबा पैराग्राफ है आचार्य अमृतचंद्र देव के पैराग्राफ में, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ। क्या कहा इसमें, यहाँ पे ये कहा कि भैया वो कर्म के उदय का फल देने की सामर्थ्य रूप से कर्म का उदय आया, देखो इसको अपन इस रूप में भी समझ सकते हैं, वो सरल है विषय को, इसको इस रूप में समझ सकते हैं। अभी अपने यहां पर जो बिजली का कनेक्शन आता है तो बिजली का ऐसे आती पावर हाउस से बिजली प्रोवाइड होती और वायर में होते हुए वो हमारे घर तक आते, ठीक है ना। اب پاور ہاؤس سے تو بجلی آ رہی ہے اور ہمارے گھر میں بجلی ہے, بجلی کا کنیکشن ہے, لیکن ہم کو بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ جتنا ہم بجلی کو یوز کریں گے, اور اگر ہم بجلی کو یوز نہیں کریں تو بجلی کا بل نہیں آتا. وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے وہ تو اپنی پھلدان روپ شکتی سے اپنے پھل دینے کی سامرتھ روپ سے پرگٹ ادے روپ ہو کر بھاوک بنے پرگٹ ہوتا ہے. اب بھاوک بنے پرگٹ ہوتا ہے تتاپی تد انوسار جس کی پرورتی ہے, تد انوسار میں نے کیا مطلب کہ وہ جو کرم کا جو ادے آیا ہے اس ادے کے انوسار اس ادے کا انوسرن کرتا ہے. اس ادے کے انوسار مطلب کیا, وہ کرم کا ادے آیا اور ہم نے اس کرم کے ادے کا سواگت کیا. ہمارے پنڈت جی ایک دشکان دیتے تھے, کیا دشکان دیتے تھے, آپ کے گھر میں کوئی ویکتی آئے, اب دو طرح کی ویوستھا ہو سکتی, آپ اس کے سنمکھ جائیں اس سے کہیں بھائی صاحب یہ آپ ہی کا گھر ہے, آپ اپنی مرضی سے چاہے جتنے دن رہیں آپ کسی پرکار کا سنکوچ نہیں کریں, تو کیا ہوا بیٹا. اور دوسرا ایک طریقہ ہے, آپ کے گھر میں کوئی آیا اور آپ نے اپنا مکھ اس کی اور سے پھرا لیا, اس کے سامنے دیکھا نہیں, ٹھیک ہے, اس کے سامنے نہیں دیکھا تو تھوڑا سا بھی عزت دار ہوگا آپ کو بنا بتائے اور آپ سے بنا بولے اور آپ سے بنا جیسے کی چلا, تھوڑا سا یہ بے شرم ہوا تو کیا کہے گا, ارے بھائی صاحب آپ نے دیکھا نہیں مجھے, میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور ہم نے پھر بھی اس کی اپیکشا کر دی تو وہ چلا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مان لیجیے آپ کے گھر میں آیا, آپ نہیں چاہتے کہ یہ آوے, کیا طریقہ, وہ کہے گا اس سے مان لیجیے برسا سردی کا موسم ہونا, ایک ٹھنڈا بالٹی بڑھیا فریج میں سے نکالا ہوا پانی کھڑکی میں سے اس کے اوپر ڈال دیا, زندگی میں کبھی نہیں آئے گا پکا. اسی طرح یہاں پہ کہتے ہیں کہ کرم کا ادے آیا, اب کرم کے ادے کی تم اگوانی کرو, ویلکم سواگتم کرو, اس کا نام ہے اس کے انوسار, تد انوسار اس کا اس کے سامنے جانا, ارتھات اس کا انوسرن کرنا, اس کا انوسرن کر کے جس کی پرورتی ہے ایسے اپنے آتما کا بھاو, اپنے آتما کا بھاو کیا ہوا, جیسے مہمان آیا آپ نے اس کی اگوانی کی, ارے بھائی صاحب پدارو آپ ہی کا گھر ہے, آپ ہی آپ بڑے بھاگ گئے ہمارے کے جو آپ پڑھائے, کیا ہوا, اب ساری ویوستھا کرو, ٹھہرانے کی ویوستھا, کھانے کی ویوستھا, پینے کی ویوستھا, ہے نا, ٹھہرنے کی ویوستھا, نہانے کی ویوستھا, سردی ہو تو گرم پانی کی ویوستھا, ہے وہ ساری ویوستھا کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی, ہے نا, کرنی پڑے گی اور اپیکشا کرنی, اس کو ٹھیک ہے وہ اس کے گھر ہم اپنے گھر, کرم کا ادے آیا اور کرم کے ادے کی ہم نے اپیکشا کر دی تو کرم کہتا ہے بھائی صاحب میں اپنے گھر جانا, آتما کہتا ہے میں بھی اپنے گھر جانا, مطلب کیا, آتما آتما میں مگر کرم کا ادے آیا, کرم روپ ہو گیا, کوئی چکر ہی نہیں. ہم نے جب اس کی اگوانی کی, ہم نے جب اس کا ویلکم کیا, ہم نے جب اس کا سواگت کیا, ارتھات ہم نے اس کے لیے پلک تاوڑے بچھائے, اپنی بھاشا میں کہیں نا ہم لوگ بولتے نا ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں پلک پاوڑے بچھا کر کے, ہم آپ کے سواگت کے لیے ٹھیک ہے, جن کے لیے پلک پاوڑے بچھائے اب وہ آئیں تو پھر ساری چیزیں تو کرنی پڑتی, نہیں کرنی پڑتی, ساری ویوستھائیں ہم لوگوں کو شیور ہو یہ ہو سب کرنی پڑتی. اب اسی طرح یہ کرم کا ادے, اب ہم نے کرم کے ادے میں پلک پاوڑے بچھائے, اپنے کرم کے ادے میں جو پلک پاوڑے بچھائے تو بیٹا بھاؤ بھاؤ, اسی کا نام بھاؤ, اسی کا نام وکار ہے, کرم کے ادے کو بولتے بھاوک, اور اس کا انوسرن کر کے, اس کا سواگت کر کے, اس کی سنمکھتا کر کے, اس اور جھکاؤ کر کے, اس کی के अनुसार प्रवृत्ति करके जो भाव आत्मा का होता है उस भाव को बोलते हैं भाव। और ये खेल अनाधिकाल से चला, यानी क्या चला रहा है, तो हमने अपनी आत्मा का अनुसरण करके कोई भाव नहीं किया। किसका अनुसरण करके हमने भाव किया? आज तक हमने कर्म के उदय के अनुसार ही अनुसरण करके अपना भाव किया। और हम कर्म की कठपुतली बने, बनाया नहीं उसने, हम बने, हम बने। तो जब हम कर्म की कठपुतली बने तो फिर कर्म का जैसा उदय होगा उसका हमने उसका अनुसरण किया ना, तो फिर उसके अनुरूप हमारे परिणाम होंगे। तो कर्म का उदय मोह रूप है तो मोह रूप परिणाम होंगे, कर्म का उदय राग रूप है राग रूप परिणाम होंगे, कर्म का उदय द्वेष रूप है द्वेष रूप परिणाम होंगे, कर्म का उदय क्रोध रूप है तो क्रोध रूप परिणाम होंगे। समझ आएगी क्या? इस तरह जो परिणाम होते हैं उसे कहते हैं भाव्य। आ गया भावक का भाव्य क्या है? भावक का भाव्य वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पुण्य पाप। सीधी सी बात कहूं जिस भाव से निरोध मिले उस भाव से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वह सब भाव कर्म के उदय का भाव्य है। अब इसमें अंतर कितना? मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व सहित राग द्वेष मोह रूप भाव्य होता है और ज्ञानी धर्मात्मा को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होता, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण आदि संबंधी जो विकार होता है ना उस उनको भी उतनी उस कर्म के उदय में जुड़ान है और उतनी इधर स्थिरता की कमी। ज्ञानी को स्थिरता की कमी में भाव्य होता है और अज्ञानी को स्वरूप की प्रतीति के अभाव में भाव्य होता है। अज्ञानी के भाव में मोह राग द्वेष होते हैं और ज्ञानी के भाव में राग और द्वेष होते हैं, मोह नहीं होता। समझ आ गया? इतना मोह तो उस नाम से चारित्र मोह को भी मोह कहते हैं ना, इसलिए मोह शब्द से कहने भले, लेकिन मोह माने नित्यात्म संबंधी भाव में वहां पर नहीं होता। इसको ज्ञान क्यों नहीं होता? कि ज्ञानी कभी माने ज्ञानी अपने स्वरूप की दृष्टि छोड़ करके कर्म के उदय का अनुसरण नहीं करता। स्वरूप की दृष्टि है तो निश्चात्व का तो उदय ही नहीं आता उसे। आ गया? तो जितना आता है और जितना अपने स्वरूप की स्थिरता का लक्ष्य चूकता है उतना उनको भी भाव्य होता है। दृष्टि प्रदान के संग में भले ही बोलेंगे कि ज्ञानी को राग नहीं होता, लेकिन जब परिणति का विश्लेषण करेंगे तो जितना उधर झुकाव उतना राग होता है और उतना राग होता है उतना बंध भी होता है और उतना दुख भी उनको दुख का भी वेदन होता है। लेकिन ये सारी व्यवस्था है, हम बहुत स्वतंत्र हैं किसका अनुसरण करें इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे कहा आत्मा भाव्य, अब उनको क्या करना है? भाव्य 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 और भाव ये दोनों चीजें तो हुई, करना क्या हमको इसका अभाव करने के लिए? तो उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा, बल काय का है हमारे पास? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान माने क्या? भेद ज्ञान माने यही, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान साहित्य के परिणाम होते हैं, ये जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, जिस भूमिका में जो संभव हो, ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे भावक त्रिकाली ज्ञाय त्रिकाली ज्ञान स्वभाव रूप भावक का यह भाव्य नहीं है, क्योंकि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वो निर्मल भावक है और उसका भाव्य भी निर्मल हो सकता है। ये तो विकारी परिणाम है ना, ये कर्म के कर्म का कर्म रूप भावक का भाव्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं। इस तरह भेद ज्ञान करे, मेरे स्वरूप में ये नहीं है, इस तरह भेद ज्ञान करे, मेरे स्वरूप के लक्ष्य से ये परिणाम पैदा नहीं होते हैं, इस तरह भेद ज्ञान करे, फिर क्या करे? दूर से ही अलग करके, अभी नाश नहीं हुआ, दूर से ही अलग करके क्या करे? मतलब वो दबा दिया उसको, इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, तिरस्कार किया, उपसंहरण की बात करनी है ना, तिरस्कार कर दिया, तो तिरस्कार तो कर दिया, तो अभी तुमने तिरस्कार कर दिया क्योंकि अभी तुम्हारा बल चल रहा है, तो तुमने तिरस्कार कर दिया, जब उसका बल आएगा तो तुम्हारा तिरस्कार क्या होगा, ग्यारह नंबर स्थान पर मुझे आगे आगे समझ ये खेल चलता है, उत्सव श्रेणी में ये खेल चलता है, स्वभाव का आत्मा का बल चलता है, आत्मा मोह का तिरस्कार करते 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 करते, लेकिन तिरस्कार करते करते मतलब उसको दबाते 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 ग्यारहवें दृष्टान तक पहुंचा, और जो ही वो ग्यारहवें दृष्टान में पहुंचा और फिर मोह का बल चालू होता है, मोह का बल जो चालू होता है ना, जिस क्रम से ग्यारहवें दृष्टान तक वो चढ़ा, आठवें दृष्टान से चढ़ा है ग्यारहवें दृष्टान में श्रेणी के लिए, उसी क्रम से वापस वहां हो सकता है सातवें छठे हिंदुस्तान में रह जाए और गिरे पांचवे में आ जाए और गिरे चौथे में आ जाए तीसरे में आ जाए दूसरे में आ जाए, यहां तक की पहले हिंदुस्तान श्रेणी, इसलिए कोई मैंने जो अप्रतिहत पुरुषार्थ की बात है यहां पर उपसम श्रेणी का पुरुषार्थ किया तो हीन पुरुषार्थ हो, प्रबल पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, शत्रु को दबाना नहीं, शत्रु को परास्त मतलब क्या करना, तो शत्रु की सत्ता नाश करना, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, दबाओगे जब तक तुम्हारी तुम्हारा बल चल रहा है वो दबेगा, अब जहां उसका बल चलेगा तुम्हें दबा, और ये उत्सव श्रेणी में सारा खेल है, और सभी जीवों को ये परिस्थिति मैंने पहले भी कहा तो मोक्ष मार्ग में विचरण करने वाले सभी जीवों के जीवन में यह परिस्थिति आवे उत्सव मारी अनिवार्य, बहुत से जीव ऐसे भी होते जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र वगैरह के बहुत सारे उदाहरण आते, नित्य निरोध से पहली बार निकले, विजय का भाव धारण किया, विशुद्ध देव भगवान के समस्करण में जिन दीक्षा अंगीकार की और उसी भाव को छाई श्रेणी मान करके केवल ज्ञान देते, ऐसे भी होते हैं मोक्ष में जाने के पहले चार बार उत्सव श्रेणी मानते, बताया था बहुत सारा है ना, चार बार पांचवी बार जब भी श्रेणी मानेंगे तो छपस श्रेणी, यहां तक भी आ गया जीव तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकट दोष के दूर हो जाने से, क्या मतलब भाव्य भावक, जो भाव्य भावक है ना तो वो हमें अपना भाव लगता था, मतलब भाव्य भावक उसको हम अपने साथ एक में करते थे, अभी क्या किया अभी अपने से उसको अलग कर, संकर दोष दूर हो गया, अर्थात हमने ये नहीं किया, ये जो मोराज इसका परिणाम होता है ये मेरा भाव्य नहीं है, मेरे आश्रय से उसको होने वाला भाव नहीं है, जैसे होता है ना गुड़ की भेली हो तो उसमें से कुछ भी झरेगा तो वो कैसा होगा, जैसे गुड़ मीठा है उसमें से झरने वाला झरण जो होगा वो भी मीठा होगा, तो जब अपना द्रव्य स्वभाव शुद्ध परिपूर्ण जो वस्तु है उसका अनुसरण करके जो परिणाम होगा उस परिणाम में क्या झरेगा, उस परिणाम में शुद्धता झरेगी, और अशुद्धता झरे तो जैसे उस गुड़ की भेली में से आपको कड़वा रस आए, अपन क्या कहते हैं देखो गुड़ के साथ में क्या मिला है जरा देखना, और देखा तो पता लगा जहां वो गुड़ की भेली रखी थी वहीं पर चिराग का भी रखा हुआ, तो अब वो जो कड़वापन है भले ही वो गुड़ की भेली में से आता हुआ दिख रहा है लेकिन कड़वापन गुड़ का है या चिराग का, इसी तरह भले ही आत्मा की पर्याय में वो राजदेश के परिणाम दिखते हैं लेकिन ये आत्मा का परिणाम नहीं है, ये तो मोह का चिराग का वहां पर पड़ा हुआ है, ऐसा जब भेद ज्ञान अपने को हो जाए, अपन ऐसा भेद ज्ञान करे तो क्या कहता है एकत्व में तंकोत्तीर्ण निश्चय और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य के स्वभाव से, अन्य द्रव्य का स्वभाव अन्य द्रव्य का अपना भाव, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है ना ये आत्मा का भाव नहीं है, ये अन्य द्रव्य का अर्थात ये पुद्गल का भाव नहीं है, उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं माने पुद्गल का स्वभाव, ठीक है ना। ये यहाँ पे कह रहे हैं होने वाले सर्व अन्य द्रव्यों अन्य भावों से उसको परमार्थ का भिन्न करके आत्मा का जो मुनि अनुभव करता है वह निश्चय से जित मोह अर्थात जिसने मोह को जीता है ऐसा जिन है, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस समस्त लोक के ऊपर तीरता हुआ प्रत्यक्ष उद्योग रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनाशी अपने से ही सिद्ध और परमात्म सब ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है ना, ऐसा अपना भगवान ज्ञान स्वभाव है। जिस ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा की बात अपन ने यहाँ पे की, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पे कहा इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके ये दूसरी जिनेंद्र भगवान की स्तुति हुई। और अब जो कल की स्वाध्याय में अपन लेंगे, ये कल की स्वाध्याय में तो आज अपन ने 33 नंबर की गाथा पढ़ी, उस गाथा में जो भाव्य भावक संकर दोष है उस दोष का अभाव करके पहले में जीता, लेकिन होता था ना जीत के राजा को छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या किया उसने अपनी ताकत बढ़ाई और फिर धावा बोल दिया, लेकिन जीता और जीत करके उसको खराब कर दिया, अब कभी उठेगा नहीं। मोह को ऐसा समूल नष्ट किया कि अब मोह उठेगा ही नहीं, वो उठेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति वो तीसरे प्रकार की स्थिति आएगी। अब उसकी चर्चा हम अगली स्वाध्याय कल
शुद्ध स्वरूप।